बात है उसको समझने का प्रयास करो। जब भरने का प्रयास करेंगे तो आपके बुद्धि का क्या होगा, आपकी बुद्धि विकसित होगी। जब आपकी बुद्धि विकसित होगी तब वो जो बुद्धि के भी परिक्रमान तत्व है उसका भी अवलोकन कर लो, दर्शन कर लो। और लेकिन बुद्धि का विकास है कि वो सर्व कर लो, बुद्धि का बुद्धि चली गई महिला कांत होने में कुछ बुद्धि नहीं लगाए, भाई जब भी बात सुनना है तो अपने समझ के आ गए उसके बाद उस बुद्धि से आप जाओगे परमात्मा के दर्शनों से थोड़े पाएंगे। तो ऋषि कभी कभी कहते हैं ऋषियों में कठिन बातें क्यों करते हैं, उनको कठिन बातें करना के लिए करते हैं, एक ऋषि में कठिन बात नहीं कर रहे हैं, एक सरल सीधी बात को भी कठिन ढंग से बताना चाहते हैं। अभी देखो दान जीते चले गए थे, भगवान ने कहा देखो हर व्यक्ति अपना ही अपना शत्रु है, अपना ही अपना मित्र है। अरे ये सुनकर के लोग कहेंगे ये क्या बात बोल रहे हैं, कोई अपना भी अपना मित्र अपना शत्रु कैसे होता, दूसरा व्यक्ति हमारा शत्रु हो सकता है, दूसरा व्यक्ति हमारा मित्र हो सकता है, हमारे यहाँ शत्रु कैसे हो सकते हैं, अपने आप मित्र कैसे हो सकते हैं। तो थोड़ा चौकानी बात बोली तो ध्यान दे रहे हैं, अपने आप शत्रुता भी गिर जाते हैं, ऐसे काम भी करते हैं जिससे हमारा ही अधिक होता है, हमारा ही नुकसान होता है, हम भी दुख होता है। जब ऐसा हम काम करते तो हमारे साथ हम अपने साथ भी शत्रुता न करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ कुछ बातें हैं, विचित्र बातें कह करके आत्मा से विमोचन करें, बात केवल इतनी सब मात्रा में कहते हैं तो केवल इतनी बात कि अपना स्वरूप वास्तव में ही आत्मा है। और ये आत्मा कहता है ये सब प्राणी जो जिस चेतना का अनुभव करते हैं वो चेतना अंतता एक है और वही सबका आत्मा है। बात इतनी है, अब इस कितनी बात को कहने के लिए किस प्रकार से कहते हैं, कहते हैं ये आत्मा जो है अनिजत, ये आत्मा तेजस के मान, ये आत्मा गतिमान नहीं, इसमें मूवमेंट कोई नहीं होता, ये स्थिर तत्व है। इस प्रकार से अब स्थिर तत्व का उदाहरण बता रहे तो ऐसे समझने के जैसे आकाश, आकाश हिलता है तो सूर्य हिल जाए, सूर्य हिल जाए, वायु हिले, पर्वत हिले, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आकाश कैसे हिले, आकाश थोड़ी जब आकाश हिले तो आकाश हिल नहीं सकता, वो तो स्पेस मात्र है जहाँ से है वो हिलना चाहिए नहीं सकता, लक्षण का इस प्रकार से जैसे आकाश है, जैसे आकाश के परे एक और आकाश है वो चेतना में आता है, चेतना भी आकाश के परे से चेतन दस हो सड़क से फैला होते हैं आकाश से क्या, और विद्यमान होने के कारण और अंत होने के कारण से उसमें कोई गति हो ही नहीं सकती, अपने स्थान में मिले या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाए तो ही नहीं सकता। आकाश तो आपने कभी जाते देखा कि आकाश से कोई ढक आकाश से चल रहा है, आकाश रह नहीं सकता, इधर उधर बैठा ही नहीं सकता। इसी प्रकार से आप उनको तो भी आकाश में सर्वत्र विद्यमान अनंत चेतन में होकर के वो कहीं ना अपने स्थान में रहकर के हिल सकता है और न कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है, क्योंकि वो एक अनंत सत्ता है। देखो उसी के बाद किसी ने समझी है ना अनेकत, और उसके बाद एकम, एक मुख्य बात ये कि आत्मा एक, आत्मा एक है, जीव अनेक है और आत्मा एक, जीव आत्मा में अंतर है। जो ये बात जिनको भी ध्यान में हो वो साथ साथ में शरीर का व्यक्तियों में अलग अलग है, ठीक है अलग अलग है, शरीरों में विद्यमान जो जीव है वो जीव भी सब शरीरों में अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर भी अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर में तादाद रखने वाला जो चैतन्य है वो जीव भी सब में शरीरों में अलग अलग है, लेकिन जीव से और ऊपर उठ करके हम अपने स्वरूप में जाते हैं तो वो आत्मा है। जब आत्मभाव पर पहुंचते हैं, आत्म तत्व को देखते हैं तो आत्मा फिर अनेक है, वो एक ही है, एक ही आत्मा सबका आत्मा। यदि हम शरीर मन बुद्धि से जीव भाव से ऊपर उठ करके आत्मभाव में आ गए, आत्मा का हमने दर्शन किया, तो जिस आत्मा का हम दर्शन कर रहे होंगे तो प्राचीन काल में शंकराचार्य जी, व्यास जी और वशिष्ठ जी, उन व्यक्तियों में भी जब अपने शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठ करके आत्मभाव पर पहुंचे होंगे, जिस आत्म तत्व का वो दर्शन कर रहे होंगे उसी आत्म तत्व का दर्शन होंगे, वो आत्मा ये आत्मा सबकी कही है, कोई भिन्न भिन्न नहीं, अनेक नहीं, एक ही है आत्मभाव पर शुद्ध होकर के एक आत्म तत्व का रूप में देखना है। अब दूसरे दृष्टांत को देखें, आकाश का दृष्टांत करके दिया कि आकाश की गति नहीं होती, मैं चाहता नहीं। तो इसी प्रकार से देखे तो ये तो हो सकता है एक जैसे पृथ्वी मंडल ऐसा है, ऐसा आकाश में और भी पृथ्वी मंडल हो, जैसा सूर्य यहाँ आकाश में दिखाई देता है, ऐसे गैलेक्सी जो दिखाई देती है तारा मंडल, इनमें सूर्य भी बहुत से हो, चंद्रमा भी बहुत से हो, इसमें ये भी हो सकता है कि पृथ्वी भी बहुत से हो, जगह जगह वायु हो, अनेक वायु भी बहुत से हो, अपने शास्त्रों प्राणों का उन्चास पवन होते हैं तो उन्चास पवन की भी संख्या हो सकती है। लेकिन देखें तो आकाश कितने हैं, आकाश तमाम कितने के आपके बोले आकाश एक ही मिले, और जितने भी स्कूल होंगे जितने भी चंद्र तारे होंगे उनका एक ही आकाश होंगे, वही एक ही आकाश दूरदर्शन जैसे उसमें जितने तारे जितने अगर हटा चुके हैं तो भी कहा एक ही आकाश में, अगर एक मिले तो भी एक आप उसी आकाश में, एक पृथ्वी तो भी आकाश में, पचास पृथ्वी है तो भी उसी आकाश में, तो आकाश एक ही है तो उसी आकाश में हम हैं। किसी प्रकार से एक अनंत चैतन्य है उसी अनंत आत्मा, वहां कैसे मिला जब वहां पहुंचे वहां भी जितना उपलब्ध मिली, जहाँ कहीं मन जाता है वहां जितना उपलब्ध मिलती है वो आत्म दर्शना उपलब्ध मिलता है। प्रेरणा लेकर पहले आता है वो आपके चैतन्य जब हमारे मन को प्रकाशित करके चेतना प्रदान कर रहा था, मन बहुत जल्दी उसमें आता है कि बहुत दूर निकल जाए तो ऐसे स्थान जहां भी जाता है वहां देखता है चेतना देना भी मौजूद, चेतना देना भी मौजूद। संसार में इतने इतने ज्ञान बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, बड़ी तीव्र गाड़ी बन रहे हैं, जेट बन रहा है, वो कौन बन रहा है, वो सब बनते हैं, बड़ी तीव्र चलते हैं, पर जमीन के सब जमीन के साथ बस चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चाहे किसी से कहें जहां भी पहुंचेंगे वो तो देखेंगे आकाश में आगे रॉकेट चाहे किसी से कहे पूरे चंद्रमा तक सब से पहुंच जाए लेकिन देखेगा आकाश में आगे आकाश में भी पहुंचे। हम यहाँ बैठे हो तो यहाँ भी आकाश है और यहाँ से हजारों लाखों की बात करके तुम संसार में पहुंचे अरे देखेंगे आकाश में आगे है, आकाश में हम भी आगे। मान लीजिए कहने का मतलब ये मन से भी आगे निकल जाने वाला आत्मा है, तुम्हारे तात्पर्य है कि मन चाहे जहां भ्रमण करे, मान लो एक घट और घट के भीतर आकाश है वो घटाकाश कहलाता है। अगर हम इस घट को यहां से लेकर के ले जा करके एक नगर से मेरठ से ले जा करके उसको सहारनपुर पहुंचा दें तो घर के भीतर वहां आकाश होगा कि नहीं होगा, तो घर के भीतर वहां आकाश कहां से आ गया, वो जो यहां मेरठ वाला जो आकाश था वो आकाश वहां सहारनपुर में घर के भीतर कैसे पहुंच गया। हम घर को ले गए थे, आकाश को ले गए थे, घर को ले गए थे, लेकिन आकाश कैसे आ गए घर के भीतर। कोई ऐसी घटना तभी हो सकती है जबकि आकाश सर्वत्र विद्यमान हो तो हम घर कहीं ले जाए आकाश सदा घर के भीतर विद्यमान रहेगा। इसी प्रकार से मन स्वयं में घट के समान जड़ है लेकिन मन जहां कहीं भी जाता है उसे चेतना का अनुभव होता है। मान लो हम यहाँ आ गए मेरठ में चल करके सुल्तानपुर से मेरठ आ गए तो सुल्तानपुर में जब हम देखते तो उसमें भी हमारा मन चेतन मन में चेतना थी, हम चेतना का अनुभव करते मेरठ में आ गए तो यहाँ भी हमारा मन चेतना का अनुभव करा, तो वो चेतना जो सुल्तानपुर में थी मेरठ में आ गई वो चेतना हमारे मन को मन में प्राप्त हो रही है, जब मन को चेतना का अनुभव हो रहा है यहाँ तो मेरठ में चेतना नहीं आ गई, वो चेतना वहां सुल्तानपुर हो गया मेरठ हो गया, वो चेतना आगे आगे चलती मानव चेतना आगे आगे चलती जहां कहीं मन जाएगा वहां चेतना पहले से विद्यमान आपको मिल जाएगा। बस कहने के बात पर यही कि आत्मा अनंत है और सर्वत्र विद्यमान है, मन एक देती मन एक देती है जिसकी भी जाता है एक मन का जाना ना होता है लेकिन आत्मा का कहीं जाना ना नहीं होता क्योंकि आत्मा सर्वत्र है। और दूसरा जैसे तरंग है समुद्र के सामने खड़े होकर जो देखे तो तरंग आ रही आ रही तरंग आती हुई किनारे पर तरंग तो समुद्र के ऊपर चलती रहती गति में होती रहती, लेकिन समुद्र क्या समुद्र भी इसी प्रकार से चल सके? यहाँ समुद्र की जहाँ काल वहाँ काल वो कहीं जाए कहीं आगे उस संकल में गंभीर इसी प्रकार के क्षेत्र समुद्र के स्थान में एक अनंत लेकर और मन की तरह समझ मन परिदाय होता हुआ चलता रहता और मन की तरह कहीं भी जाए सर्वतर अधिष्ठान होकर जो चैतन्य है ये वही इसको प्रकाशित कर रहा है। इसलिए अनंत चैतन्य होकर के जो विद्यमान चैतन्य है वो आत्मा है और मन का अधिष्ठान जो आत्मा मन को प्रकाशित करने वाला वो चैतन्य है। मन जहाँ कहीं भी जाए तो वही चैतन्य मन को प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकार से मन सो जमीयो न ये न देवा आप मन गुरु मदत। अभी देखते हैं कि देवा ये देव के माने हैं इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता। देखो देव के माने कोई अज्ञात वस्तु नहीं कोई काल्पनिक वस्तु नहीं। हम जैसे नेत्र में शब्द को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो एक एक देवता है। नेत्र में जो रूप ग्रहण करने की शक्ति है वो सूर्य देवता है। नासिका में सुगंध द्रव्य ग्रहण करने की जो शक्ति है वो ही कुमार देवता है। इसी प्रकार सब इंद्रियों में देवता है और इन देवताओं का हर व्यक्ति अनुभव करते हैं अनुभव करते हैं कि हम देखने की शक्ति हमने है तो शक्ति का हम अनुभव करते हैं अनुभव करते हैं शक्ति का अनुभव ही करते हैं देखते रहते हैं। कान में सुनने की शक्ति है कि नहीं है शब्द को सुनने की है। जो सुनने की जो शक्ति है वो शक्ति क्या देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति एक समान है? नहीं विभिन्न प्रकार की है। दूसरे प्रकार की शक्ति जिसके दर्शन ग्रहण करना करते हैं वो एक दूसरा देवता है। लेकिन जितने भी देवता है आप ये सब इन देवता कहते हैं द्योतन शक्ति वाले प्रकाशित करने वाले और प्रकाशक एक परम प्रकाशक एक परमात्मा है। वही परम परमात्मा जब इंद्रियों में स्थित होकर के देव भाव प्रकाश करता है तो ये देव तो चलते हैं उपाधि के कारण से लेकिन वो आत्मा अनंत होकर के निर्वाचित होने के कारण से अनंत आकाश की तरह से एक समान सदा विद्यमान है। वो कहीं आता जाता नहीं। देवता भी मानी इंद्रियों की जो देवता भी कहीं जाए दौड़े और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे तो वहां उनको चेतना परमात्मा चेतना वहां यथावत पहलेगी मिलेगी। ये देवता भी चेतना के आगे नहीं कर सकते। कोई भी इंद्रिया कोई भी मन कोई भी बुद्धि इस चेतना का अनंत होने की कहां तक ये चेतना है कहां तक ये चेतना है दौड़ते जाए दौड़ते जाए दौड़ते जाए तो कहीं उनको अंत नहीं मिलेगा। जहां कहीं ये पहुंचेंगे वहां वो आत्मा का चेतन आकाश के समान विद्यमान वहां पहले से उपलब्ध। इसलिए कहते हैं कि दान देवा आत्मन पूर्व मशद सद्भाव को अनुमति अतिथि पृथ्वी। अभी भी यहाँ पर पृथ्वी शब्द का प्रयोग कर दिया जिससे कि जो राष्ट्र का आधार वो राष्ट्र को समझ आ जाए। तो कहते सद्भाव को अन्य अन्यति जो अन्य जितने भी जितने भी दौड़ने वाले सभी दौड़ रहा हो चाहे इंद्रियां दौड़ रही हो मन बुद्धि दौड़ रहे हो चाहे प्राण दौड़ रहे हो चाहे जीव दौड़ रहा हो चाहे देवता दौड़ रहे हो कुछ भी दौड़ रहे हो ये सब दौड़ने वाले पृथ्वी में हो ये सब दौड़ने के लेकिन सबके आगे वो निकल जाए आगे मन उनका सबका अक्षर उनको जैसे कि जैसे कोई एक कार चल रही उसके पीछे दूसरी कार चल रही तो पीछे वाली कार जब आगे कार निकालने की कोशिश करता है तो क्या कहते हैं ओवरटेक करते हैं। तो जैसे ओवरटेक किसी वाली कार आगे ओवरटेक कर लेती है इसी प्रकार से चाहे जितने तेज दौड़ने वाले मन बुद्धि प्राण कुछ भी हो यह आत्मा सबको ओवरटेक कर लेगा अकेले ओवरटेक कर लेगा और आगे उतना भी पहले खड़ा हुआ और कैसे जिंदा खड़ा हुआ चिंता भी खड़ा हुआ वो चलता रहता कुछ नहीं जाता रहता कुछ नहीं जहां है सही बैठा रहता है लेकिन कौन आगे जाता है। माने ये सभी संभव है एक प्रकार से कि जब वो आत्मा आकाश की तरह सर्वत्र फैली से विद्यमान हो और उसी के भीतर की सारी व्यक्तियां अन्य जितनी व्यक्तियां उसी के भीतर हो ये मन हो चाहे बुद्धि हो चाहे प्राण आदि हो कुछ भी ये जितने भी करेंगे फिरेंगे कहीं कुछ भी करेंगे तो उसी के भीतर जाएंगे जहां पहुंचेंगे वो आत्मतत्व मिलेगा। उसी आत्म चैतन्य से सब बुद्धि भी प्रकाशित हो रही है मन भी प्रकाशित हो रहा है प्राण भी प्रकाशित हो रहे हैं शरीर भी प्रकाशित हो रहा है वही एक अलग चेतना संस्था विद्यमान है उसी के प्रकाश से उसी की चेतना से सब प्रकाशमान है। सब की बनावट अपने आप को अंत कर रहे हैं। ऐसा अंत जो चैतन्य है वो आत्मा है। यहाँ पर तो एक बात है, अब दूसरी बात कहते हैं अंतिम चौथी पंक्ति में ये कहते कि तस्मिन नभो मात्र स्वाधाति का जैसे पहले बताया तो इसके माने किसी आत्म चैतन्य में भी वायु भी स्थित है और वायु में जो जल है वो भी किसी में स्थित है, इससे बाहर ये भी नहीं। मैंने कहने के प्रकार बोला तात्पर्य हुआ कि समस्त महाभूत किसी अन्य चैतन्य आत्मा में भी स्थित है। आत्मा में ही आकाश स्थित है, आकाश में ही वायु स्थित है और वायु में जो मेघ है वो वायु में हो रहे, वो मेघ जल का रूप है और वायु में वो उतने जल को वायु धारण किए हैं मेघ के रूप में। मेघ जब बरसता है कितना पानी बरस जाता है, कितना भारी पानी होगा, कितना बहाव आता है, कितनी नदियां और कितना सरोवर भर जाते हैं, उतना सारी पानी वायु में टांगे रहता है आकाश में। वायु कितनी सामर्थ्य, वायु जल से वायु सूक्ष्म है लेकिन जल से वायु में अधिक शक्ति है, कोई से भारी पानी उठा ले और पानी का बरसात तो सूखने आता तो सूखा। अब ये इसका इसे कहने के बाद पर यह हुआ कि अंत चैतन्य आत्मा है वो स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान और अनंत है। अब उसके बाद आपको जो कुछ दिखाई देता वो कहाँ है, जब आत्मा अनंत है तो अगर मैंने उसको आकाश दिखाई देता तो आकाश कहाँ है, आकाश आत्मा में, एक आत्मा के बाहर नहीं, अनंत आत्मा में ही आत्मा। वायु होता है दिखाई देता है, वायु कहाँ है, आकाश में, आकाश में है आत्मा, इसके माने वायु कहाँ है, अंतरा आत्मा में ही, आत्मा से बाहर हो ही नहीं। और अगर वायु को चलना होगा आकाश में मेघ है तो मेघ कहाँ है, वायु में, वायु आकाश में, आकाश कहाँ, आत्मा में, इसलिए जल कहाँ है, आत्मा में। इसके बाद सारी सृष्टि जितनी भी है अरादि बुद्धि में बैठी हुई है, आत्मा में ही सारे जगत स्थित है और आत्मा से बाहर कुछ नहीं। और वो जो अंतिम तत्व है वो आत्मा, वो अपना ही स्वरूप है।